ये आकाशवाणी दिल्ली है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 दिवसीय कार्यपुस्तिका जारी की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सीबीएसई के कक्षा 10वीं और 12वीं के राजधानी के टॉपर विद्यार्थियों को आज सम्मानित किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंद्र सिंह सिरसा ने ऊंची इमारतों पर साल भर एंटी स्मॉग गन की तैनाती के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने भरत नगर इलाके में अवैध रूप से रह रहे 45 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और राष्ट्रीय राजधानी में अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और हल्की वर्षा की संभावना। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने आज 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 100 दिवसीय कार्यपुस्तिका भी जारी की। इस पुस्तिका का नाम है काम करने वाली सरकार 100 दिन सेवा के। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस उपलक्ष्य में राजधानी में कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता के लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए वह सरकार पूरी निष्ठा से दे रही है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे विकसित भारत आगे बढ़ेगा विकसित दिल्ली भी आगे बढ़ेगी और महत्वपूर्ण विकास देखेगी। उन्होंने कहा कि ये 100 दिन सरकार ने जनता की सेवा को समर्पित किए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया लेकिन हमारी सरकार जनता के लिए काम कर रही है।
जो दिल्ली की जनता के अधिकार है उनको देने की दिशा में दिल्ली की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और निश्चित रूप में विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी।
इस दौरान ये भी बताया गया कि हर विधानसभा क्षेत्र और वार्ड में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें विधायक और पार्षद 100 दिन के काम की रिपोर्ट दिल्ली की जनता के सामने पेश करेंगे। इस बीच कल 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक भव्य समारोह भी आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
इस अवसर पर दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने कहा कि वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि जनता के लिए उपलब्ध रहना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रतिदिन 1000 से अधिक लोगों से मिलती हैं। उन्होंने कहा कि आज सरकार का 100वां दिन था और 100 दिनों के भीतर ऋण चुकाने का फैसला किया गया था।
1000 से ज्यादा लोगों से मुख्यमंत्री मिलती हैं प्रतिदिन, उनकी बात सुनती हैं। मैं भी सैकड़ों लोगों से घर पर मिलता हूं। इसलिए यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम जनता के बीच में हैं। आज 100वां दिन था, हमने तय किया 100 दिन के अंदर अपना कर्ज मुक्त कर दें। 3 लाख तक की आय वाले बच्चे जिनको वजीफा मिलना चाहिए था उनको 2022 से पैसे नहीं दिए। आज 19 करोड़ रुपए का कर्ज हम चुका के आए हैं। इसको अगर एजुकेशन का दिन मानते हैं तो मानना ही चाहिए। हमने उन मेधावी बच्चों के साथ संवाद किया।
भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये 100 दिन एक नई कार्य संस्कृति, जन आशाओं की पूर्ति और दिल्ली के सर्वांगीण विकास की दिशा में मजबूत शुरुआत के रूप में याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया था और इन 100 दिनों में भाजपा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरने के लिए कटिबद्ध है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि इन 100 दिनों में सरकार ने तत्परता से निर्णय लिए और धरातल पर उन्हें लागू किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज राजधानी के सीबीएसई के कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 87 छात्रों को टैबलेट प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में 100% परिणाम लाने वाले विद्यालयों को भी पुरस्कार दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों ने जो ऊंचाइयां छुई हैं वो हमारे लिए भी सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार का 100वां दिन है और सरकार ने हमेशा नीतिगत फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि ये सफलता केवल अंकों की जीत नहीं है बल्कि छात्रों के कठिन परिश्रम, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता और जीवन के प्रति उनके सकारात्मक सोच का उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने विद्यालयों को अगले वर्ष 100% परिणाम की दिशा में काम करने को कहा और दिल्ली को पूरे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का लक्ष्य दिया। इस बीच शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस वर्ष राजधानी में 75 नए सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें अत्याधुनिक सुविधाएं, अनुभव आधारित शिक्षा और भारतीय संस्कृति से जुड़े मूल्यों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों को राष्ट्र स्तर पर एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने निर्देश जारी किया है कि ऊंची इमारतों पर साल भर एंटी स्मॉग गन की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि फैसला राजधानी के प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक लंबे समय से अनदेखे प्रदूषण स्रोत पर कठोर कदम उठाए हैं, जो कि जवाबदेही और पारदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। श्री सिरसा ने कहा कि ये पहल न केवल पर्यावरण की रक्षा करती है, बल्कि हमारे भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ और स्वस्थ हवा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिरसा ने कहा कि निर्देश सभी व्यावसायिक परिसरों, मॉल, होटलों, कार्यालय, संस्थागत इमारतों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि एंटी स्मॉग गन की तैनाती के लिए 6 महीने की समय सीमा निर्धारित है, जबकि संचालन पूरे वर्ष अनिवार्य रहेगा। श्री सिरसा ने कहा कि इस क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित एजेंसियों को दी गई है, जो तिमाही रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को सौंपेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार 2025 प्रदान किए। ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव उपस्थित थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों की सराहनीय सेवाओं के सम्मान में इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा वर्ष 1973 में की थी। कला, संस्कृति, भाषा और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद की विचारधारा के 60 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष पेंटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस विशेष अवसर पर दिल्ली सहित देशभर के विभिन्न राज्यों से आए सैकड़ों कलाकारों ने अपनी रचनात्मकता और वैचारिक गहराई का प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री कपिल मिश्रा ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये प्रतियोगिता देश के महान विचारक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म सिद्धांत को समर्पित है। श्री मिश्रा ने कहा कि सिद्धांत आज के समय में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है।
आज के समय में कई बार तो ये भी लगता है कि काश उस समय की राजनीति ने अगर एकात्म मानववाद को अपना लिया होता तो भारत पहले ही कहीं विकसित राष्ट्र बन गया होता। मोदी सरकार इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है और मैं ज्ञान फाउंडेशन, पीपीआरसी और नेशनल गैलरी, इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने दिल्ली में इस प्रकार का आयोजन किया है। दिल्ली के बहुत सारे सैकड़ों कलाकार यहाँ पर बैठे हैं, पेंटर यहाँ बैठे हैं और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स अलग अलग विषयों पर बनाई जा रही है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गोवा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी गोवा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि गोवा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश भर में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में राज्य निरंतर विकास और जनकल्याण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर राजधानी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गोवा राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर, परंपराएं और ऐतिहासिक विरासत को जन साधारण के समक्ष प्रस्तुत करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुआ। इस कार्यक्रम में गोवा की कलात्मक परंपराओं, कारीगरी और सांस्कृतिक प्रतीकों को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसने दर्शकों को गोवा की सांस्कृतिक समृद्धि से परिचित कराया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर पत्रकारों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक पत्रकारिता ने सदैव सत्य, साहस और जनहित की भावना को प्रबल किया है। श्रीमती गुप्ता ने समाज में जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले सभी पत्रकारों का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित संपूर्ण राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन गुरुबचन सिंह सलारिया को याद कर रहे हैं, जो 1961 में कांगो में गृहयुद्ध जैसी स्थिति के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में भारतीय दल के रूप में शामिल थे और इस दौरान उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था।
1935 में पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया 1957 में एक गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए। कैप्टन सलारिया ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की भारतीय टुकड़ी के साथ दिसंबर 1961 में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। 5 दिसंबर को कैप्टन सलारिया ने एक पलटन का नेतृत्व करते हुए एलिजाबेथ विले एयरफील्ड के निकट एक स्थिति को सुदृढ़ किया, जहां कटंगी सैनिकों ने 2 बख्तरबंद कारों और लगभग 90 सैनिकों द्वारा एक मजबूत नाकाबंदी स्थापित की थी। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया और उनके साथियों ने संगीनों, खुखरी, हथगोले और रॉकेट लॉन्चर के साथ हमला करते हुए दुश्मन के 40 लोगों को मार गिराया। कैप्टन सलारिया और उनके साथियों ने बख्तरबंद वाहनों को भी नष्ट कर दिया, जिससे बाकी लोग घबरा कर भागने के लिए मजबूर हो गए। दुश्मन की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन सलारिया अंत तक लड़ते रहे। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को उनके अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने भरत नगर इलाके में अवैध रूप से रह रहे 45 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इन अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों में से 30 लोगों के निर्वासन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, उन्हें जल्द ही वापस भेज दिया जाएगा। मीडिया के साथ बातचीत में उत्तरी पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि ये बांग्लादेशी हरियाणा में ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे।
ये बांग्लादेशी फैमिलीज भरतनगर थाने के इलाके में टेम्परेरीली आए हुए थे। वैसे इंटरोगेशन से ये पता चला है कि हरियाणा में कहीं भट्टे पे मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। इनसे कई स्मार्टफोन मिले हैं, बांग्लादेश की आईडीज मिली हैं। इसमें कुछ महिलाएं हैं और कुछ बच्चे भी हैं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यवसाय संचालकों से खाद्य लेबलिंग और प्रचार में 100% दावों का उपयोग न करने की सलाह दी है और इसे उपभोक्ताओं के लिए संभावित रूप से भ्रामक बताया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने आज जारी एक सलाह में खाद्य उत्पाद लेबल और प्रचार प्लेटफॉर्मों पर 100% शब्द के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर किया। प्राधिकरण ने कहा कि 100% शब्द का उपयोग चाहे अलग से हो या अन्य वर्णनकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से पूर्ण शुद्धता और श्रेष्ठता की गलत धारणा पैदा करने की संभावना है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के सहयोग से आज विश्वविद्यालय परिसर और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक विशेष स्वच्छता अभियान का सफल आयोजन किया। इस अवसर पर JNU प्रशासन, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों, छात्रों, MCD अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। ये अभियान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित के नेतृत्व में आयोजित किया गया। यह अभियान JNU की सामूहिक भावना का प्रतीक था और स्वच्छ भारत अभियान के प्रति विश्वविद्यालय की अटूट प्रतिबद्धता को फिर से पुष्ट करता है। दिल्ली में आज दिनभर बादल छाए रहे, जिसे दोपहर में लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और हल्की वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 दिवसीय कार्यपुस्तिका जारी की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने CBSE के कक्षा 10वीं और 12वीं के राजधानी के टॉपर विद्यार्थियों को आज सम्मानित किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऊंची इमारतों पर साल भर एंटी स्मॉग गन की तैनाती के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने भरत नगर इलाके में अवैध रूप से रह रहे 45 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और राष्ट्रीय राजधानी में अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और हल्की वर्षा की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।